पीछे सुनाई पड़ रहा है नारायणम नमस्कृत्य नरम च एवं नर उत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततः जयं उदीरये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्
बोलिए अनुवाद इस विजय के सब इस विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को नरोत्तम नर नारायण ऋषि को विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं एक ही शब्द पर पूरा तात्पर्य है जो कि इसमें अंत में है जयम जय मतलब श्रीमद् भागवत का एक नाम है जय। जय का मतलब क्या है विजय। तो श्रीमद् भागवत का एक नाम है जय यानी विक्ट्री अंग्रेजी में बोलते हैं विक्ट्री विजय। तो इस पर ही प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को जय क्यों कहते हैं। जय का मतलब कि आपको जीतना है। ये श्रीमद् भागवत आपको जय प्रदान करती है विजय प्रदान करती है किसके ऊपर। हाँ संसार बंधन के ऊपर या कलयुग के ऊपर। तो प्रभुपाद जी समझाएंगे उसको समझें। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं जय पर ही पूरा तात्पर्य है कि इसको जो है श्रीमद् भागवत को जय क्यों कहा गया। तो वो जय मुदी रहे उसके बाद जय का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। तो जय का मतलब श्रीमद् भागवत है और किन किन को नमस्कार करना है। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना है नर नारायण ऋषि को नमस्कार करना है सरस्वती देवी को नमस्कार करना है और व्यासदेव को नमस्कार करके इसके बाद से जय का पाठ करना चाहिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। ये जो श्लोक है ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत के भी शुरू में आया है या कुछ श्लोकों के बाद मतलब लगभग शुरू के श्लोकों में ही आया है और महाभारत में भी ये हमेशा आता है ये श्लोक। बल्कि मैंने परीक्षण किया महाभारत में तो प्रत्येक पर्व के आरंभ में ये श्लोक आता है। महाभारत में आप जानते हैं कितने पर्व हैं। अठारह पर्व हैं कम से कम इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। महाभारत जैसे श्रीमद् भागवत में स्कंद होते हैं स्कंद में कई अध्याय होते हैं उसी प्रकार से महाभारत में पर्व हैं 18 पर्व हैं। तो प्रत्येक पर्व के आरंभ में ये श्लोक आता है। यहां तो चौथा श्लोक है ये लेकिन महाभारत में सबसे पहले ये श्लोक आता है। तो महाभारत का भी नाम जय है श्रीमद् भागवत का भी नाम जय है और जितने पुराण हैं सब में श्लोक आता है। ये आप लोग जानते कितने पुराण हैं 18 पुराण है। तो प्रत्येक पुराण के आरंभ में ये श्लोक आता है और गर्ग संहिता में भी हमने देखा ये श्लोक आता है। तो ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो जय शब्द की जो व्याख्या है ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। और क्या लिखते हैं कि सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। गहनतम भाग का मतलब कठिनाइयां, इस भौतिक संसार में जो कठिनाइयां हैं, ये भौतिक संसार है ही, दुखालयम, दुखों का समुद्र है, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए ही पूरा वैदिक साहित्य है। इसलिए ये श्लोक जो है हर वैदिक साहित्य में आता है। और जय मतलब, जय का मतलब श्रीमद् भागवत भी है, महाभारत भी, संपूर्ण वैदिक साहित्य को जय बोलते हैं। अगर एक सामान्य नाम अगर प्रत्येक पुस्तक को दिया जा सकता है तो वो क्या है, जय। जय तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। अब कठिनाई, हरि बोल, कठिनाई अगर जापना करें तो अच्छा है, जापना करें, जाप बंद कर दीजिए कृपा करके। तो पूरा जो भौतिक संसार है ये कठिनाइयों से भरा हुआ है, और जीव कठिनाई पड़े क्यों, ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल गए। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष शाश्वत है। तो लड़ाई चल रही है, जीव संघर्ष कर रहा है, यानी युद्ध कर रहा है, कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए युद्ध कर रहा है, और नई नई कठिनाइयां आती जाती है। इस भौतिक संसार में जीव जो है कुछ कठिनाइयों को अगर टाल दे तो सोचता है कि मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। कुर्वन दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते गृही। इस संसार में जो गृहस्थ, गृहमेधी समझिए, जो गृहमेधी है, घर में आ सकता है, वो दुखों का कुछ भी थोड़ा सा अगर प्रतिकार करता है, यानी टाल देता है किसी प्रकार के दुख को, तो सोचता है कि मैं सुखी हो गया हूं, जबकि दुखों के समुद्र में है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर वो दुखों को टालने में अगर सफल हो जाए तो सोचता है कि मैं सुखी हो गया। तो ये संघर्ष, जीवन संघर्ष। तो भागवत को जय क्यों कहा गया है, क्योंकि हम लोग एक युद्ध कर रहे हैं, एक लड़ाई कर रहे हैं। प्रत्येक जीव युद्ध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, क्या पाने के लिए, सुख पाने के लिए और दुखों से छूटने के लिए। तो चूंकि भौतिक संसार में शाश्वत संघर्ष है, शाश्वत युद्ध है, इसलिए श्रीमद् भागवत को जय कहा गया है, क्योंकि ये आपको विजय प्रदान कराएगा। और जीव के लिए इसमें से योजना बनाकर निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस शाश्वत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ नित्य संबंध पुनः स्थापित करना होगा। तो उसको सहारा लेना पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी ईश्वर की। पूरा का पूरा जीवन क्या है, एक युद्ध है। ये पूरा का पूरा जीवन एक युद्ध है, जीवन युद्ध, जीवन संग्राम। अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो आपको भगवान के साथ अपने संबंध को फिर से जोड़ना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत इसमें सहायता करती है, इसलिए इसको जय बोलते हैं। जो भी इस प्रकार से उपचार करना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। बहुत से मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं वेदों को तो प्रमाण मानते हैं लेकिन पुराणों को प्रमाण नहीं मानते हैं, है कि नहीं। इनमें से एक समाज है आर्य समाज के नाम से जाना जाता है, तो वे लोग वेदों को प्रमाण मानते हैं लेकिन पुराणों को नहीं मानते, श्रीमद् भागवत को नहीं मानते, है ना। किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ लोग सत्वगुणी हैं, कुछ रजोगुणी हैं और कुछ तमोगुणी हैं। पुराणों का ऐसा विभाजन हुआ है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं। 18 पुराण में 6 पुराण तमोगुणी हैं, 6 पुराण रजोगुणी हैं और 6 पुराण सत्वगुणी हैं, ठीक है। और उन सात्विक पुराणों में से एक श्रीमद् भागवत है जो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सभी पुराणों का अपना महत्व है, क्योंकि जो लोग तमोगुण में हैं तो उनको तमोगुण से रजोगुण में निकालने के लिए वो पुराण है, जो रजोगुण में हैं उनको रजोगुण से सत्वगुण में लाने के लिए वो पुराण है, और जो सत्वगुण में हैं उनको सत्वगुण से ऊपर उठाने के लिए ये सात्विक पुराण है। पुराणों का ऐसा विभाजन हुआ है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को प्राप्त करके जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। तिलसुत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के उत्सुक हैं। तो देखा सूतवाच, सूत जी ने जब शुरू किया तो पहले दो श्लोकों में उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार किया, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके, फिर नर नारायण ऋषि को नमस्कार करके, देवी सरस्वती को नमस्कार करके और व्यास देव को नमस्कार करके फिर कहना शुरू करते हैं। अब अगले श्लोक से सूत जी बोलना शुरू करेंगे, यानी प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो ये तीसरा श्लोक है जिसमें कि वे नमस्कार ही कर रहे हैं, इस श्लोक में भी कहा था तम व्यास सुनम उपयामी गुरु मुनि नाम, उपयामी का मतलब नमस्कार करता हूँ, मुनियों के गुरु सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ। और दूसरे श्लोक में जो सुख गोस्वामी का पहला श्लोक है, इस अध्याय का दूसरा श्लोक है, उसमें कहते हैं मुनिम आनत उसमी, तुन मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ, आनत मैंने झुकता हूँ, उन मुनि के सामने झुकता हूँ। तो ये जो है कुछ व्यक्ति हैं इस श्लोक में जिनको कि नमस्कार करने की बात कही गई है, तो उन पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले व्यक्ति कौन है नमस्कार करने के लिए इस श्लोक में? नारायण। तो प्रभुपाद जी नारायण जो है का अर्थ बताते हैं भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण नारायण है। नारायण वैसे चार व्यक्तियों को कहा जाता है नारायण, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, नहीं कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, धन्यवाद, कृष्णम नारायणम वंदे और कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, यानी चार कृष्ण है, चार व्यक्तियों को कृष्ण कहा गया है। एक तो भगवान नारायण जो नर नारायण ऋषि हैं उनको कृष्ण कहा गया है क्योंकि वे सांवले रंग के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं नर नारायण ऋषि। और दूसरे कृष्ण ब्रज प्रिय, जो ब्रज वासियों के प्रिय हैं उनको कृष्ण कहा गया है ना, जो सबको आकर्षित करते हैं। और तीसरे कृष्ण कौन है? कृष्णम द्वैपायनम वंदे, व्यास जी को भी कृष्ण कहा गया है क्योंकि वो भी सांवले रंग के हैं। और कृष्णम वंदे प्रथासुतम, प्रथा के पुत्र यानी अर्जुन, अर्जुन को भी ना कृष्ण कहा गया है, वो भी सांवले रंग के हैं। तो इस तरह से जो है नारायण, नारायण का अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ कृष्ण बता रहे हैं, नारायण हम नमस्कार करते हैं यानी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके। इसके बाद कहा है नरम चैव नरोत्तमम, नर को नमस्कार करके। तो नर में जो है नर और नारायण दोनों को प्रभुपाद जी शामिल कर रहे हैं, नरम चैव नरोत्तमम, ये नर और नारायण ये दोनों जो ऋषि हैं ये आप जानते हैं किसके पुत्र हैं? धर्म के पुत्र हैं, धर्म ब्रह्मा जी के पुत्र हुए धर्म, धर्मा स्तनात् दक्षिणतो, ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म का जन्म हुआ, अधर्म पीठ से पैदा हुआ। लेकिन धर्म जो है ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से पैदा हुआ और धर्म का जो विवाह है वो दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था, दक्ष की 16 कन्याएं थी जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ।
और उनमें जो सबसे छोटी कन्या थी यानी धर्म की पत्नियों में जो सबसे छोटी थी उसका नाम था मूर्ति, और मूर्ति से नर नारायण ये दो जुड़वा बालक पैदा हुए नर नारायण। और जब नर नारायण भगवान का जन्म हुआ था तो श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि अप्सराओं ने नृत्य किया और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गाया और ऋषि मुनियों ने स्तोत्र पढ़े, नमस्कार किया नर नारायण। और वही नर नारायण ऋषि जो है बद्री नारायण कहे जाते हैं, बद्री नारायण है ना, या बद्रीनाथ। बद्री, बद्री का मतलब क्या है? बोर, बेर, बेर, बेर का फल। बेर के फल को ही बद्री बोलते हैं, और क्योंकि बेर के वृक्षों का ही जंगल है इसलिए उसको बद्री वन कहते हैं। और उसमें निवास करते हैं नर नारायण ऋषि, तपस्या करते हैं, इसलिए उन्हें बद्रीनाथ कहा जाता है ना, बद्री का आश्रम उस स्थान को कहा जाता है। और ये नर नारायण ऋषि अभी भी तपस्या कर रहे हैं, अभी तपस्या कर रहे हैं। सतयुग में नर नारायण ऋषि का साक्षात दर्शन होता है। भारतवर्ष में नर नारायण ऋषि हैं क्योंकि साक्षात दर्शन देते हैं सतयुग में, और नारद जी उनके शिष्य हैं। त्रेता युग में भगवान का साक्षात दर्शन होता है रामेश्वरम में, और द्वापर में भगवान का साक्षात दर्शन होता है द्वारका में, और कलयुग में भगवान का साक्षात दर्शन होता है जगन्नाथपुरी में। ये जो चार धाम हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार युगों के लिए अलग अलग जो है ना स्थान है जहाँ के भगवान साक्षात निवास करते हैं। तो नर नारायण ऋषि जो है बद्रिकाश्रम में रहते हैं, तो उनको नमस्कार करना है। नर नारायण ऋषि के बारे में ये बताया जाता है कि संसार की रक्षा के लिए ये तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या से ही पूरे जगत की रक्षा हो रही है। अन्यथा मनुष्य इतने गिरे हुए स्तर में आ चुका है कि सब एक दूसरे का संहार करने के लिए तैयार है, और बड़े बड़े घातक हथियार बना लिए हैं कि किसी भी समय प्रलय हो सकती है। जो नाभिकीय अस्त्र बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, किसी भी समय प्रलय हो सकती है, और होने वाली भी थी, कई भविष्यवाणियां हुई कि होने वाली थी, तीसरा भी शुद्ध होना है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्यों रक्षा हो रही है इस संसार की? नर नारायण ऋषि की तपस्या के कारण, वे तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से ही जगत की रक्षा होती है। भगवान कृष्ण कभी अर्जुन को बताते हैं कि मेरे चार रूप हैं जो जिस जगत की रक्षा करते हैं। एक तो महाविष्णु या कारणोदक स्थायी विष्णु, कारण समुद्र में लेते हुए हैं, तो वे जगत की रक्षा करते हैं। किस समय? जब ब्रह्मा का लोक भी समाप्त हो जाता है, प्रलय, महाप्रलय हो जाती है, सब तत्वों का भी प्रलय हो जाता है, तो जितने ब्रह्मांड हैं सब खाली ब्रह्मांड हैं, उनकी श्वास के द्वारा ही उनके शरीर में आ जाते हैं, इस प्रकार से इस जगत की रक्षा करते हैं। फिर दूसरे भगवान के रूप में गर्भोदक स्थायी विष्णु, जो कि महाविष्णु के श्वास से जब ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, गर्भ समुद्र में निवास करते हैं, और अपनी नाभि से कमल उत्पन्न करके ब्रह्मा को जन्म देते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में। तो गर्भोदक स्थायी विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक स्थायी विष्णु हैं जो जगत की रक्षा करते हैं, सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्रवेश करके, और समय समय पर अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये तीसरे रूप हैं भगवान के जगत की रक्षा करने के लिए। और चौथा रूप भगवान का है नर नारायण ऋषि, जो कि बद्रिकाश्रम में तपस्या में लगे हुए हैं नर नारायण। भागवत में बताया गया है कि इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव की सेना भेजी थी। इंद्र ये सोच करके कि शायद हमारा इंद्रपद छीन ले अपनी तपस्या के द्वारा, तो नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव की सेना भेजी थी। जैसे इंद्र सफल हुआ कई ऋषियों की तपस्या को भंग करने में, जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा था, लेकिन नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग नहीं कर सके। जैसे इंद्र ने मारकंडे ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भी कामदेव की सेना भेजी थी, लेकिन वो मार्कंड ऋषि को विचलित तो नहीं कर सके। लेकिन फिर मार्कंड ऋषि के गुस्से को देखकर, क्रोध को देखकर के कामदेव की सेना भाग गई कि श्राप दे देंगे, तो उससे भी जो है ना एक प्रकार से तपस्या नष्ट हो जाती है। अगर कोई ऋषि काम के वशीभूत नहीं होता है तो क्रोध के वशीभूत हो जाता है। लेकिन ये पहली घटना थी कि नर नारायण ऋषि के आश्रम में जब कामदेव की सेना आई तो नर नारायण ऋषि में ना तो काम पैदा हुआ ना ही क्रोध पैदा हुआ। कई लोग बड़े पुण्यात्मा हैं जो काम को वश में कर लेते हैं, कामम दहंत कृतनो तन रोष दृष्टिया रोषम दहंत मत सेना दहंत संयम, तो क्रोध की दृष्टि से काम को तो जला डालते हैं। शिव जी ने भी क्रोध के द्वारा काम को जला डाला। ये क्रोध जो है ना जो उनको जलाता है उसको वो नहीं जला पाते हैं, क्रोध की अग्नि में वो जलते हैं। तो शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया लेकिन क्रोध के द्वारा। लेकिन नर नारायण ऋषि ऐसे शांत हैं जिनमें ना काम है ना क्रोध है, और ये एक आश्चर्य हुआ पहली बार जब उनके आश्रम में कामदेव की सेना आई। बसंत ऋतु आ गई और जो है शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगा। लेकिन जब नर नारायण ऋषि के हृदय में काम का संचार नहीं हुआ, सब अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तो फिर सब डर गए, कामदेव डर गए, अप्सराएं सब डर गई कि अब तो क्रोध करके हमें भस्म कर देंगे, श्राप दे देंगे। तो भाग रहे थे, ये नर नारायण ऋषि कहते हैं कि नहीं नहीं तुम लोग मत भागो, तुम लोग हमारे अतिथि हो, हम तुम्हारा अतिथि सत्कार करेंगे। तो उनको आसन दिया जंगल में ही, उनको बैठाया और जो बन के जो फल वगैरह है उनको भोजन के रूप में खिलाए सबको। तो पहली घटना है जो कि नर नारायण ऋषि जो है जंगल में कामदेव की सेना का स्वागत करते हैं। वो सब भयभीत होकर भाग रहे थे कि इनमें अगर काम का संचार नहीं हुआ तो क्रोध से जरूर श्राप दे देंगे, क्रोध भी नहीं उनको जो है स्वागत करते हैं कि स्वागत है तुम्हारा। और फिर भोजन कराने के बाद उपहार दिया, और उपहार क्या दिया, नारायण ऋषि ने जो है अपने जंगल से कई अप्सराएं उत्पन्न की जिनके सौंदर्य से ये सब जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं फीकी पड़ गई, इतनी सुंदर अप्सराएं थी भगवान नर ऋषि ने अपने जंगल से उत्पन्न की। फिर उनमें से एक अप्सरा जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी वो उपहार के रूप में दे दी कि ले जाओ तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। और उर्वशी जो नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है, उरु उरु माने जंघा, जंघा से उत्पन्न हुई इसलिए उर्वशी कहलाती है, नारायण ऋषि की जंघा से उत्पन्न हुई। और कपिल भगवान भी इसी घटना के कारण अपनी माता देवहूति को जब उपदेश देते हैं कि कौन व्यक्ति है जो स्त्री के जो है द्वारा आकर्षित नहीं हुआ या नहीं होता है, मतलब बहुत सावधान रहना चाहिए स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय, बहुत सावधान रहना चाहिए। यहां तक ब्रह्मा जी भी जो है अपनी पुत्री को देख करके आकर्षित हो गए, और जब वो हरिणी का रूप धारण करके भागी तो वे उसका पीछा कर रहे थे बैल के रूप में। तो इस तरह से जो है बड़ी लज्जाजनक स्थिति हुई ब्रह्मा जी की। इससे शिक्षा मिलता है कि व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में। लेकिन फिर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी की दशा है तो फिर तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेशु को नुखंडित दीपमान जसिम नारायणम मृते जोशिन मैं यह माया। फिर ब्रह्मा जी के संतान, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, सब ब्रह्मा जी से ही तो संतान है। तो फिर उनमें कौन है जिसकी बुद्धि खंडित ना हो स्त्री के कारण, यानी विचार ना आते हो, काम वासना के विचार ना आते हो स्त्री के कारण, ऋषिम नारायणम ते, नारायण ऋषि के अलावा, नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि ऐसे महान हैं कि उनके आश्रम पर ही सब नृत्य चल रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, कामदेव भी है वहां पर, और जो है बसंत ऋतु है, सब कुछ है उनमें, न तो काम का संचार है ना क्रोध का संचार है, केवल ये नर नारायण ऋषि ही है ऐसे, जो ऐसे हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो कपिल भगवान ये कहते हैं कि सावधान रहो, अपने को बहुत महान समझ करके ये नहीं कि स्त्रियों के संगति करो और एकांत में रहो, एकांत में बैठो बातें करो, ये जो है सावधान करते हैं, लेकिन नर नारायण ऋषि ऐसा कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। फिर नर नारायण ऋषि ही द्वापर में प्रकट हुए अर्जुन और कृष्ण के रूप में, अर्जुन नर ऋषि के अवतार हैं और भगवान कृष्ण नारायण ऋषि हैं, नर नारायण ऋषि के अवतार हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए, और नरम चैव नरोत्तमम, नर को कहा गया है नरों में उत्तम, मनुष्य में उत्तम, तो वही नर ऋषि जो है जब अर्जुन के रूप में प्रकट हुए तो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन ही है। भगवान गीता में कहते हैं पांडवा नाम धनंजय है, पांडवों में धनंजय, और पांडव सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है, भगवान के भक्त हैं, उनमें भी अर्जुन श्रेष्ठ है। या आठवें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से देहे देहे वृतांबर, अधि यज्ञो अहम एवात्र देहे देहे वृतांबर, कौन सा चौथा श्लोक है आठवें अध्याय का चौथा श्लोक, तो सर भगवान कहते हैं देहे वृतांबर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ हो, और यहां पर कहा गया है नरोत्तमम, नरम चैव नरोत्तमम। और महाभारत में कथा आती है कि एक पृथ्वी का सम्राट था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो पूरी पृथ्वी का सम्राट था, तो वो ढूंढ रहा था कि मैं किससे युद्ध करूं, कोई उससे युद्ध करने के लिए मिला, वो बहुत शक्तिशाली राजा था, उसकी सेना बड़ी शक्तिशाली थी, तो किसी ने उसे बताया कि नर नारायण ऋषि के पास जाओ, उनके समान शक्ति किसी के पास नहीं है, वो तुमसे युद्ध कर सकते हैं, तुम्हें युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं। तो जब नर नारायण ऋषि के पास वो राजा आया अपनी सेना लेकर के और कहा कि मुझे युद्ध का दान दीजिए, मुझसे युद्ध करिए, क्योंकि आपके समान मैंने सुना है कोई शक्तिशाली नहीं है, तो भगवान नारायण ऋषि कहते हैं कि देखो यहां तो युद्ध का कोई काम ही नहीं है, हम लोग तपस्या में लगे हुए हैं, हमारा ये कार्य नहीं, युद्ध करना हमारा कार्य नहीं है, ऐसा कहकर चुप हो गए। लेकिन वो राजा बार बार आग्रह कर रहा था युद्ध के, तो नर ऋषि जो उनके पास बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उनमें कुछ गुस्सा आया और वो खड़े हो गए और बोले कि ठीक है मैं तुझे अभी संतुष्ट करता हूं, ठीक है मैं खड़ा हूं, अपनी सेना को आदेश दे युद्ध करने के लिए, युद्ध कर। तो राजा ने सेना को आदेश दिया तो नर ऋषि को सब सैनिकों ने बाण मारे और नर ऋषि के शरीर में इतने बाण लग गए कि जरा भी जगह नहीं थी जहां बाण ना लगा हो, बाणों से बिध गए पूरे शरीर में, कांटे जैसे बाण थे पूरे शरीर में बिध गए। और नर ऋषि ने उस समय क्या है कुछ सीखें ली थी, सीख समझते ना, तिनके तिनके मुट्ठी भर तिनके लेकर के ही वो खड़े हुए थे युद्ध करने के लिए, बोले बस मेरे पास ये तिनके हैं, इन तिनकों से मैं युद्ध करूंगा, पूरी जो तेरी सेना है शस्त्रों के साथ है युद्ध करूं। तो समय नर ऋषि ने क्या किया, अपनी मुट्ठी को खोल करके और फूंक मारी जिसे तिनके उड़े और सब सैनिकों की आंखों में घुस गए, सब बड़ी पीड़ा हुई, जितने सैनिक सब पीड़ा से चिल्लाने लगे, हार गए हार गए। इस प्रकार से वो जो राजा था उसने शरण ली नर नारायण ऋषि की और वो विजय प्राप्त हुई, नर नारायण ऋषि को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद हाँ ये जो नर नारायण ऋषि हैं तो इनसे भी कृष्ण कथा का उदय हुआ है, एक ऐसी भी परंपरा है जिसमें कि कृष्ण कथा का उदय नर नारायण ऋषि से हुआ है। और ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने शेष जी को कृष्ण का अपना चरित्र जो है ना बताया है, शेष जी ने भगवान कृष्ण से सुना तो दसवें स्कंद में चरित्र है जो विशेष रूप से ब्रह्म है विवर्त पुराण में जो नर नारायण ऋषि हैं यही नारायण जी को कृष्ण का चरित्र सुना रहे हैं बहुत विस्तार से। तो वो जो कृष्ण का चरित्र है भगवान पहले शेष जी को सुनाते हैं स्वयं ही, और शेष जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया कृष्ण का चरित्र, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र धर्म को सुनाया, और धर्म ने अपने पुत्र नर नारायण को सुनाया, और नर नारायण ने नारद जी को एक कृष्ण का चरित्र सुनाया, और नारद जी फिर गर्ग जी को सुनाते हैं जिससे कि गर्ग संहिता एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना हुई है जिसमें 12,000 श्लोक हैं और केवल कृष्ण का ही चरित्र है। और ब्रह्म में व्यवहार पुराण में वही कृष्ण का चरित्र नारायण ऋषि सुनाते हैं नारद जी को, नारद जी ने गर्ग जी को सुनाया और राजा बहुलासु को सुनाया, जो गर्ग संहिता है वो नारद और बहुलासु जी का ही संवाद है पूरा, और बहुत विस्तार से भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। इसके बाद नरम चैव नरोत्तमम, ठीक है, कुछ हमने बातें लिखी है नरनारायण ऋषि के बारे में, ये जो भगवत दर्शन में मेरा लेख छत्ता है श्री भगवान ने कहा, ये 24वां भाग है भगवत गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक में जो लेख है इसमें मैंने कुछ लिखा है। संजय ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश तथा अर्जुन को गुडाकेश कहा है। ऋषिकेश और गुडाकेश ये दोनों नाम एक जैसे लगते हैं। इन नामों का प्रयोग करके संजय धृतराष्ट्र को यह